शराब के बारे में जब पहला हुक्म आया, उस पर बाद सहाबा ने फिर दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफियन, कि ए अल्लाह, तू हमें शराब के बारे में वाजे और शाफी हुक्म दे। उस पर सूरत अन्निसा की आयतें उतरी। जब ये आयत पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता वअंतुम सुकारा, तो फिर दुआ की गई, या अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे में शाफी बयान वाजे फरमा। तो ये आयत नाजिल हुई। कहाँ तक? आखिर तक। इन्नमा युरीदु शैतानु से लेकर फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकने वाले हो, बाज आते हो? तो सहाबा कराम ने कहा, हम बाज आए, हम बाज आए। फरमाया, इन्नमल खमरु, बेशक खमर। खमर क्या चीज है? खमर हर नशा आवर चीज को कहते हैं जो अकल पर गालिब आकर उसको ढांप ले। खमर नशा आवर चीज जो अकल पे छा जाए, अकल जायल कर दे। खमर शई का माना होता है एक चीज को पर्दे में छुपाना। खमर शहादा, गवाही छुपाना। खमर वजहू, मुंह को छुपा लिया। खिमार उस कपड़े को कहते हैं जिससे सर ढांपा जाता है। इस्लाम की इस्तिलाह में खमर क्या है? अल-खम्रु मा खामर अल-अक्ल, हर वो चीज खमर है जो अक्ल को छुपा दे। शरीयत के मकासिद में से एक मकसद अक्ल की हिफाजत भी है, क्योंकि अक्ल ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान की फजीलत है तमाम जानवरों पर। इरशाद बारी ताला है, वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्श। ये इज्जत किस वजह से है? इंसान की अक्ल की वजह से। अक्ल का इस्तेमाल और दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को जानवरों से आला अफजल मुमताज करता है। तो कोई चीज जो अक्ल को नुकसान दे, इंसान की मत मार दे, इंसान को जानवर की सतह तक ले आए, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की इंसानियत छीन ले, वो सब ममनू है, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन खमर आमतौर पर शराब के लिए इस्तेमाल होती है। बाज रिवायात में खमर वो जो अंगूर से बनाई जाती है, अंगूरी शराब। बाज ने खजूर से बनी हुई शराब के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी एक चीज हम तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर बना लेते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि अंगूर के अलावा खजूर से भी अगर नशावर चीज बने तो वो भी उसी में आ जाता है। उलमा ने कहा है कि सकर का माना मुस्किर यानी नशावर के है। अलबहर जखार जो जैदिया के अहम फिकी मराजे में है, उसकी 5वीं जिल्द में है कि खमर वो है जो अंगूर और ताज़ा खजूरों से बनाई जाए, और इनके अलावा हर दूसरी नशा आवर शय को मजाजन खमर बोला जाएगा। यानी लफ्जी माना खमर का क्या है? जो अंगूर या खजूर से बने। लेकिन इस पर फिर हर वो चीज जो किसी भी चीज से बने, खा चावल से बने, आपको मालूम है इंडोनेशिया मलेशिया में जहाँ चावल ज्यादा था, वहां लोग चावल से भी नशा आवर चीज बनाते गला सड़ा के उसको। इसी तरह गंदम से भी बनाई जाती, ऐसे ही और चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं जिससे शराब या कोई नशावर चीज बना ली जाती। यानी लफ्जी तौर पर खमर का इतलाक खजूर और अंगूर की बनी हुई चीज नशावर, लेकिन मजाजी तौर पर हर वो चीज जिससे नशावर ड्रिंक बने या चीज खाने को कुछ बने जिससे इंसान का दिमाग जो है मुतासिर हो। और इसमें कसरत हो या किल्लत, दोनों का हुक्म बराबर है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसकी ज्यादा मकदार नशा दे उसकी थोड़ी मकदार भी हराम है। यानी सिर्फ उस वक्त हराम नहीं कि जिस वक्त अकल में कुछ फतूर आए, उसका एक घूंट भी, एक कतरा भी हराम है। एक और किताब है अलमिनहाज, ये शाफिया की किताब है, इसमें आता है, और खमर दर हकीकत अंगूर की नचोड़ का नशावर मादा है, अगरचे इसमें झाग न उठे हों। इसके अलावा हुरमत के तहत हर वो शय आएगी जिस पर नुसूस दलालत करें। अहनाफ के यहाँ خمر اپنے حقیقی وجود کی بنا پر حرام ہے، اس کے علاوہ دوسری اشیاء نشہ آوری کی بنا پر، کوئی بھی چیز جو نشہ دے حرام ہے، اور خاص طور پر عقل میں فطور پیدا کر دے، اور اس کی چھوٹی سی کوانٹیٹی بھی، خواہ اس سے عقل میں نہ بھی فطور آئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ خمر ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرنے والی، عقل پہ چھا جانے والی اور بے خودی کی کیفیت پیدا کرنے والی، بے خود کر دے انسان کو، انسان آپے میں نہ رہے، خود پہ کنٹرول نہ رہے، اور خاص طور پر خمر جو ہے دماغ کے اوپری سطح کے حصوں کو متاثر کرتی ہے، جو اصل میں ارادے، اخلاق، فکر اور نظر کے مراکز ہیں۔ خمر کے بارے میں دو چیزیں یا دو احکامات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ تیسرا اور قطعی حکم ہے جو سورۃ المائدہ کی اس آیت میں آیا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کے لیے ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس روز لوگوں کی شراب فضیح، فضیح جو ہے یہ پھولوں اور کھجور سے تیار شدہ تھی، فضیح شراب کا نام ہے جسے آپ کے ہاں کئی نام ہیں، کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو کہہ رہا تھا، اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ روایت ہے بخاری، مسلم، نسائی، موطا کی، چار کتابوں میں آئی ہے، کہ لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی، اور مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس شراب کو نکالو اور بہا دو، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا، بس جس شخص تک یہ آیت پہنچ گئی اس کے پاس شراب کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو نہ اس کو خود پیے، نہ بیچے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی بچی ہوئی شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے، پھر لوگوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ چنانچہ بعض لوگ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئیں، کیونکہ اس میں کہا نا اسم کبیر ہے، کہ اس میں گناہ بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، تو پھر بھی کچھ لوگ ابھی پیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قرآت کے دوران آیات کو خلط ملت کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی تک شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی، اور وہ یہی آیت سورۃ المائدہ کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے، سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ آؤ گے؟ چنانچہ لوگوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا، اسی دوران کہ ہم شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم اس کو حلت ہی کے دور میں پی رہے تھے، یعنی حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، اس وقت آپ پر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، یہی سورۃ المائدہ کی آیت، چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو یہ آیت فہل انتم منتہون تک پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی سی پی تھی اور کچھ ابھی اس برتن میں باقی رہ گئی تھی جو ان کے اوپر کے ہونٹ کے نیچے لگا ہوا تھا، جیسا کہ سینگنی لگانے والا کرتا ہے، مثلا گلاس ہو تو، یعنی اوپر کے ہونٹ کو ابھی لگا ہوا ہے، اندر نہیں گیا، تو کیا کیا؟ سب لوگوں نے باقی ماندہ شراب کو واپس بڑے پیالے میں الٹ دیا اور کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے رک گئے۔ یعنی اگر کسی نے ये ग्लास यहां तक, आप देखे ना पीने में, रावी की आप देखे रिवायत कितनी ज्यादा डिटेल में है ना। जब हम पीते हैं ना तो किस तरह पीते हैं, ऊपर का होंठ इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ नीचे से डालें तो पी नहीं सकते आप। कहते हैं कि ऊपर का होंठ अभी लगा ही था, यानी पीने के लिए उसको अंदर करने ही लगे थे कि हुक्म पहुंचा, उन्होंने वापस गिलास उसी में उल्टा दिए जिससे डाले थे। उसके बाद एक घूंट भी आगे नहीं लेके गए। हम जैसा होता कहते हैं ठहर जो, ये तो खत्म करने दो, बाकी हुक्म फिर सुनाना, अभी ना बताओ। इमाम अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इब्न हातिम वगैरह ने रिवायत किया है कि उन्होंने वही रिवायत जिसमें कि एक दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ की गई, फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा, तो फिर ये हुक्म नाजिल हुआ। फिर इसी तरह एक और रिवायत में भी आता है कि शराब के जाम अबू तलहा, अबू उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल के दरमियान गर्दिश दे रहा था। देखिए ये सब बड़े बड़े सहाबा हैं, यहाँ तक कि उनके सर यसर और तमर के मखलूत मादे के नशे से झुके हुए थे कि अचानक एक मुनादी को ऐलान करते हुए सुना, लोगों मालूम होना चाहिए कि शराब हराम हो गई। इसके बाद उन्होंने फरमाया, इसके बाद इस वक्त तक हमारे पास ना कोई अंदर आया और ना ही हम में से कोई बाहर निकला, यहाँ तक कि सब मटके हमने तोड़ दिए। यानी सिर्फ गिलास ही नहीं रखा, मटके भी तोड़ दिए। हम में से बाज ने वजू किया, बाज ने गुसल किया, और फिर हमने उम्मे सुलैम की खुशबुओं में से कुछ अपने लिबासों में लगाई। उनके घर में पी रहे थे ना, तो उनकी खुशबू लेकर अपने लिबास में लगाई और मस्जिद की तरफ बाहर निकल गए। चुनाचे वहां देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे हैं। अब इससे आप देखें कि किस तरह फौरी फौरी तौर पर सहाबे कराम ने हुक्म मान लिया, हत्ता कि पीते पीते थोड़े थोड़े नशे में भी आ रहे हैं तो भी मान लिया। कैसे, क्यों? इसलिए कि बाज अखवाम ने इस शराब को हराम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कामयाब न हुए। इसकी मिसाल क्या है? अमेरिका ने शराब नोशी की ममानत के सिलसिले में अपना मशहूर कानून 17 नवंबर 1919 को सादिर किया, 1919 में, जिसको कांग्रेस ने तकरीबन इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया, यानी बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में। फिर नवंबर 1920 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। इस कानून के मुताबिक हर वो शख्स काबिले सजा करार पाया जो शराब को छुप कर या ऐलानिया बनाए, उसको फरोख्त करे या उसकी नशरो इशात करे, उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करे, या इसको मुंतकिल करे, या इसको अपनी निगरानी में रखे। फिर अवाम को हिफ्जान सेहत, अखलाकी नुक्ता निगाह से शराब के खतरात से आगाह करने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की गई। इस सिलसिले में 9 मिलियन से ज्यादा सफहात काले किए गए, यानी लिखे गए, 9 मिलियन पेजेस, और कुरान की 2 आयतें, ये 2 यहाँ जिन्होंने आखिरी हुक्म। और 1920 में इस सिलसिले में $65 मिलियन इस मुहिम पे खर्च किए गए। ये आज के दौर में भी आप देखें ये रकम कितनी ज्यादा है, $65 मिलियन किस काम के लिए लगाए गए? इस कोशिश में लगाए गए, इस प्रोपेगेंडा मुहिम में कि शराब से रोका जाए लोगों को। ये कानून 1933 तक नाफिज रहा। इस दौरान हुकूमत ने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को सजाएं दी। उनको शराब नोशी या बनाने या तिजारत करने के सिलसिले में जेलों में बंद किया। लेकिन इस दौरान शराब की मुख्तलिफ किस्में पोशीदा तौर पर फैल गईं, मुजरिमों की पार्टियां वजूद में आ गईं। ये मामला इस हद तक बढ़ा कि कांग्रेस ने मजबूर होकर 1933 में बियर और सिडर को, सिडार या सीडर को, CIDAR को जायज करार दे दिया। फिर बिलाखिर दिसंबर 1933 में कतई पाबंदी उठा ली गई, यानी मजबूर होकर कानून खत्म करना पड़ा। तो इससे दुनिया की अजीम तरीन ममलकत पिछली सदी में नाकाम हो गई शराब कानून को बनाकर वापस लेने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन ये कितना बड़ा मोजज़ा है कि इस्लाम ने बग़ैर कोई सजा दिए, बग़ैर किसी को जेल में बंद किए, बग़ैर कोई लंबे चौड़े लेक्चर दिए और बग़ैर कोई बहुत बड़े किताबें लिखे, 2 आयतें सुनाकर लोगों के मुंह से जाम उतरवा दिए। क्या चीज़ थी वो, कैसे हुआ ये सब कुछ? ईमान की ताकत से, तरबियत से, आखरत के अजर के लिए, कि यहाँ नहीं तो वहाँ तो मिलेगा, बास स्कॉलर्स ने, मिस्टर स्मॉल मिल्स ने अपनी किताब लर्निंग अबाउट अल्कोहल में कहा है, इस हकीकत वाक्या की बुनियाद पर बनाया गया कि इसकी ममानत शराब से जंग करने के सिलसिले में नाकाम हो गई। वो लिखता है कि शराब के मसले से नबर्द आजमा होने का तरीका बुनियादी एतबार से सिर्फ अकीदे की गुजरगाह से मुमकिन है। किसी को भी शराब अगर छुड़ानी है तो उसका हल क्या है? ईमान मजबूत करो उसका। ईमान मजबूत होगा, इरादा मजबूत होगा, तो वो उस वबाल से निकल आएगा। इसी तरह आर्नल्ड ट्वाइन भी मशहूर हिस्टोरियन है, उसने अपनी किताब सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल में लिखा है, बेशक इस्लामी रूह इस बात की ताकत रखती है कि वो इंसान को शराब के बंधन से मजबूत दीनी अकायद के जरिए आज़ाद करा दे, क्योंकि उसने इसके जरिए वो चीज़ साबित करके दिखा दी जो इंसानियत अपनी तवील तारीख में करने के काबिल ना हुई। पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि इस्लाम के अलावा ये कामयाबी किसी और को नसीब ही नहीं हुई कि कोई ऐसी आदत लोगों से छुड़ा सके। ये टाइम बी के अल्फाज का तर्जमा है, बिलाशुबा सिर्फ इस्लाम ही के लिए यह मुमकिन हो सका कि वो इस चीज को साबित करके दिखा दे जिसको कुव्वत की बिना पर आयद करदा कवानीन और बैरून नफ्स की पाबंदियां करके ना दिखा सकीं। इसी बिना पर हम कहते हैं कि इस्लाम इस बात की ताकत रखता है कि वो इंसानियत को इस मगरबी तमद्दन के असरात से निजात दिला दे जिसके जाल पूरे अतराफ आलम को अपने अहाते में लिए हुए हैं। इसीलिए तो इस्लाम इतनी बड़ी थ्रेट है इन सब के लिए, और अपनी कमज़ोर तरीन हालत के बावजूद भी ये लोगों के लिए एक खौफनाक चीज़ है, और इसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया जाता है जो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा देर पा असरात रखता है। तो नतीजा क्या निकला? खमर जो है वो क्या है? हराम है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्तरखान पे खाने से मना फरमाया जिस पर शराब हो। आपने उन बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया जिनमें शराब बनाई और पी जाती थी। बाद में जब हुर्मत का कानून नाफिज हो गया तो बर्तनों से पाबंदी उठा ली गई। अब जैसे शराब की बोतलें होती हैं, बाज़ वक़्त उनको धो के उनको किसी डेकोरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शराब पीने वाले के लिए कोई ख़ास हद मुकर्रर नहीं थी, कोई ख़ास सज़ा मुकर्रर न थी। जो इस जुर्म में गिरफ्तार होके आता उसके जूते मारे जाते, लाठियों से मारा जाता, खजूर के संटे मारे जाते, मुक्के वगैरह मारे जाते। ज्यादा से ज्यादा 40 जरबे आपके जमाने में इस जुर्म पे लगाई गई, यानी 40 जूते मार लो या कोड़े मार लो या कुछ भी। हजरत अबू बकर के जमाने में भी 40 ही मारे जाते। हजरत उमर के जमाने में भी इब्तदा में 40 कोड़ों की सजा रही, फिर जब उन्होंने देखा कि लोग जुर्म से बाज नहीं आते तो उन्होंने मशवरा करके उस सजा को दुगना कर दिया, यानी 80 कोड़े कर दिए गए। इसी सजा को इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और एक रिवायत में इमाम शाफी शराब की हद करार देते हैं, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और एक दूसरी रिवायत में इमाम शाफी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 40 कोड़ों को ही पसंद किया है कि जो असल हुक्म है। इसके बाद दूसरी चीज जिस चीज को मना किया गया है वो है वल मईसर, जुआ। मईसर का लफ्ज यसर से है, आसानी। वो कसीर माल दौलत जो मुफ्त में बा आसानी हाथ लग जाए, इसे ही जुआ और कमारबाजी भी कहते हैं। जुए की मशहूर किस्म तो जो जुए के नाम से है वो हराम है शरन कानूनन, और जवारी को किसी माशरे में इज्जत के साथ नहीं देखा जाता। लेकिन अफसोस के आज के माशरे में मॉडर्न बनने के शौक में कई लोग शौक शौक में दूसरे नाम रख के जुआ खेलते हैं, मसलन कार्ड्स खेलना अगर उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो, या कोई भी तरीका ईजाद कर लें आप। इसी तरह लॉटरी, मुअम्माबाजी, रेफल के टिकट, इनामी बॉन्ड्स, रेस कोर्स और बीमा की बात शक्लें, शतरंज, ये सब कमार की किस्में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अशतरंज मिनल मईसर, शतरंज भी जुआ है, खेल है एक तरह का। तो जुआ जो है इसको भी इस्लाम ने हराम करार दिया। तीसरी चीज वल अंसाब। अंसाब नसब करना से है, किसी चीज को गाड़ना। ऐसे मकामात जिन्हें किसी मौजूदा या गैर मौजूद बुत या किसी दूसरे शिरकिया अकीदे की बिना पर अवाम में तकद्दस का दर्जा हासिल हो। कोई भी चीज जिसे मुकद्दस मान लिया जाए, वो असल में मुकद्दस कोई नहीं, सिम्बॉलिकिज्म में यानी सिंबल के तौर पर खुद ही पहले उसे मुकद्दस माना, फिर उस पर नजर व न्याज चढ़ाने लगे। इसमें बुनियादी जो स्पिरिट है अनसाब के हराम करार देने की, वो ये कि ये काम दरअसल अल्लाह के अलावा दूसरों की खुशी के लिए होते थे, उनके नाम पर होते थे, इसलिए इनको हराम करार दिया गया। बुत परस्ती, बुत फरोशी, मुजस्मे, इनकी खरीदो फरोख्त वैसे ही हराम। और कहा यह कि इनको कहीं गाड़ के फिर वहां नजर न्याज हो तो उससे भी बड़ा जुर्म। अब हमें एक सीधा रखा हुआ बुत तो नजर आता है, लेकिन कई इंसानों को जो हम बुत बना के पूजते हैं वो बाज़ोका तो हमको नजर नहीं आते, और वैसे भी नहीं आते, और हम उनसे बहुत हाई होप्स रखते हैं कि वो हमारे लिए मालूम नहीं क्या कुछ करेंगे। तो उनकी कब्रों पर जाकर नजर न्याज देना, अगर आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं तो आप कहीं भी दे सकते हैं, घर पर ही दे लें, जैसे कुर्बानी का गोश्त घर पर ही आप ज़बह करते हैं किसी बुचर खाने में, तो ऐसी कोई भी चीज़ करना ये भी ममनू है। चौथी चीज़, वल अज़लाम, वो तीर जिनके जरिए फाले निकाली जाती, नीज वो तीर जिनके साथ जुआ खेला जाता है, इसमें कार्ड्स भी आ सकते हैं। फिर इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, गंदगी के काम। अच्छा, गंदगी कहाँ से आ गई? शराब में तो ठीक है गंदगी आती, आपको मालूम है कैसे बनती है? अमूमन ये होता है कि एक बड़ी क्वांटिटी में, मसलन अंगूर से आमतौर पे बनती है, वो काफ़ी दिन तक, बाज़ोकत महीनों वो चीज़ वहाँ सड़ सड़ के सड़ती, उसमें सड़ान और बू और नशा और मालूम नहीं क्या कुछ उसके अंदर पैदा हो जाता, फिर उसको निचोड़ के उसके अंदर से सैचुरेट कर लेते हैं। लेकिन सिरका जो है नशावर नहीं, वो फिर उसकी आगे कुछ और शेप बदल जाती है ना, तो जब केमिकल चेंज आ जाए किसी चीज़ में और उसके अंदर वो तासीर ना रहे तो फिर वो हुक्म बदल जाता है। फिर आप देखें कि अफ्रीका का एक मखसूस इलाका है जहाँ पर हाथी सेब खाने के लिए जाते हैं, जब तक वो पहुँचते हैं काफ़ी लंबा सफ़र करके तो सेब गल कर गिर कर गल सड़ चुके होते हैं। कहते हैं कि बाज़ोकात हाथी अगर वो गले सड़े सेब खा लेते हैं तो उससे उनके अंदर इतना नशा आ जाता है कि वो टकरे मार कर बड़े बड़े जंगल तबाह कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा आवर हो, जिसमें इंसान अपने होश व हवास जो है वो खो बैठे, तो वो चीज़ नापसंदीदा है। इसमें सुरूर की कैफियत के लिए हो या बिल्कुल ही अकल मारी जाए, थोड़ी हो या ज़्यादा, सबकी ममानत। फरमाया रिज्स, तो शराब पे तो बनाने का और उसके जो अज्जा हैं इंग्रेडिएंट्स वो वैसे भी तैयब में नहीं आते, लेकिन मैसर जो आप बज़ाहिर उसमें गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन उससे दिलों में जो बोझो अदावत पैदा होता है कि बाज़ोकत बहुत दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, और अनसाब भी बुतों के नाम पर, और बुतों की गंदगी के बारे में भी आप देखें कि कुरान पाक में आता है ना, फजतनिबु रिज्स मिनल अवसान वजतनिबु कौल अज़्ज़ूर, सूरत अल हज आयत 20 में आता है, बस बुतों की गंदगी से बचो। तो बुत तो बाज़ोकत बड़े ही संगे मरमर के खूबसूरत सफ़ेद होते हैं, उनकी गंदगी कहाँ से आ गई? यानी उनके अंदर जो तसव्वुर है अल्लाह के शरीक होने का, ये एक इंतहाई गंदा ख्याल है, कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसा ख्याल नहीं रख सकता। फिर वल अज़लाम, और तीर पांसे, इनकी गंदगी क्या है कि इनके ज़रिए जो माल हासिल होता है वो हलाल नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो हलाल ना हो बेसिकली वो क्या है, रिज्स में आ जाती। हज़रत उमर ने कहा कि शराब तेरा सत्यानाश हो, तेरा जिक्र तो जुए अनसाब और अज़लाम के साथ है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि हराम का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, तो अगर खमर हराम नहीं तो वो तो जुआ भी हराम नहीं, क्योंकि उसका भी जिक्र साथ, फिर तो वो अनसाब भी हराम नहीं, फिर तो अज़लाम भी हराम नहीं। लेकिन कुरान में अगर लफ्ज़ हराम नहीं भी तो हदीस में लफ्ज मौजूद है वजाहत के साथ, सराहत के साथ, इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान चाहता है, क्या चाहता है, अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा, कि तुम्हारे दिलों में अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे। किस तरह, फिल ख़म्र वल मैसिर, शराब और जुए के जरिए। और क्या नुकसान है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुमको रोक देता है अल्लाह के जिक्र से। शराब पी के तो अकल मारी जाएगी, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, जिक्र कैसे करेंगे। और जुए में कैसे होता है, वो इसकी ऐसी लत पड़ जाती है कि बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि जिन लोगों को नशा हो जाता है जुआ खेलने का, उनको और काम सब भूल जाते हैं, वो एक दीवाना वार उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये अल्लाह के जिक्र से भी रोकती हूँ ये चीज़ें, वह अनसलात और नमाज से। कभी आप मैच देखने बैठे हैं और जुमे की नमाज का वक्त हो जाए और अपने भाइयों को शोहरों को देखा करें, कितनी भारी हो जाती है उन पर नमाज। अच्छा यही नहीं पढ़ सकते, यही पढ़ लेते हैं आज जोहर पढ़ लेते हैं। बाजू का अगर आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो और कुछ नहीं, अगर आप ये लूडो ही लेके बैठ जाए ना और नमाज का वक्त आ जाए, तो आप कहाँ रोकेंगे, रोक ही नहीं पाते। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, कैरम बोर्ड लेके बैठ जाए आप, उठ ही नहीं सकेंगे। कंप्यूटर, जी हाँ, उस पे गेम्स, चैट पे चले जाएं, आपको याद ही नहीं रहेगा क्या वक्त हो चुका है। एक के बाद एक साइट पे जा रहे हैं, एक के बाद एक पे इधर उधर उधर, पूरी दुनिया है स्क्रीन में, घर बैठ के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं आप। फरमाया कि ये चीजें तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है कि नंबर एक तो ये गंदगी है, नंबर दो ये कि अदावत और बुख्स पैदा करने वाली चीजें हैं, नंबर तीन अल्लाह के जिक्र से रोकती है, नंबर चार नमाज से रोकती। अल्लाह ताला पूछते फहल अंतुम मुंतहून, रुकने वाले हो, रुकोगे? हम तो नहीं रुक रहे, आप कहते रहे। जाहिर जो लोग कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, अमल से कह रहे हैं, और अमल से कहना ज्यादा सख्त है, हम तो नहीं रुक रहे। और फिर साथ ही फरमाया वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, वहज़रू और बच के रहना, मोहतात रहना, पकड़ ना हो जाए, फिसल ना जाओ, वहज़रू। अच्छा कभी सोचा आपने कि इसके फौरन बाद अती और रसूल क्यों आया? कि अगर कुरान में तुम्हें कोई नजर आता है कि कहीं से गुंजाइश निकलती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखो कि जब ये आयतें उतरी थी तो लोगों ने क्या किया था, और खुद आपने क्या फरमाया था, और सहाबे कराम का तर्ज अमल क्या था। फइन तवल्लैतुम, और अगर तुम मुंह मोड़ते हो, बाज नहीं आते, फालमू तो जान लो क्या, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, कि हमारे रसूल पर तो खुल्लम खुल्ला पहुंचाना था, उसने तो बात पहुंचा दी। अब अगर तुम ये कह के जी ये हदीस में इसलिए हम ये नहीं मानते, तो बताने वाले का कोई नुकसान नहीं, तुम अपनी खैर मनाओ, देखो फिर होता है क्या। लैसा अलल्लज़ीना आमनु, कोई हरज नहीं उन लोगों पर जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और उन्होंने अच्छे काम किए, जुनाहुन कोई गुनाह, फीमा उसमें जो ताएं वो खा पी चुके। यानी पिछली जिंदगी में अगर बुतों की कमाई या अजलाम और अंसाब से कुछ खाया पिया या शराब पी ली, इसलिए ताई मुँह का लफ्ज़ आया जो खाने और पीने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ा मत्तक़व, जब वो तकवा इख्तियार करें, वह आमनु और ईमान लाएं, वह अमिलुस्सालिहात और अमल करें अच्छे, सुम्मत्तक़व फिर तकवा करें, वह आमनु और ईमान लाएं, सुम्मत्तक़व फिर तकवा करें, वह आहसनु और अच्छा रास्ता इख्तियार कर लें, एहसान करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत रखता है मुहसिनीन से। अब ये तीन दफा क्यों आया, वत्तकौ व आमनु सुम्मत्तक़व व आमनु, फिर तकवा और ईमान, फिर तकवा और ईमान। इसलिए कि इंसान एक दफ़ा वादा करता है अच्छा नहीं करूँगा, फिर थोड़े दिन फिसल जाता है, फिर एहसास होता है, फिर इंसान संभलता है, फिर पहले से ज़रा बेहतर हालत होती, फिर फिसलने का डर होता, फिर दोबारा तकवा की तरफ आ जाता है और इंसान बिल आखिर संभल जाता है। इसलिए बार 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 की बात है, पहली मरतबा तकवा और ईमान के जब हुक्म आया तो इंसान ने कहा ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर उस कंपनी में गए फिर वैसे हो गए, फिर निकले फिर भागे, फिर तकवा किया फिर। यानी इंसान कभी ये ना सोचे कि एक दफ़ा अगर उसने वादा कर लिया तो हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये चीज़ें छोड़ना आसान नहीं होती, इनको टाइम लगता है, लेकिन गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बिल आखिर वो वक्त आएगा कि जब तुम एहसान के दर्जे पे पहुंच जाओगे। एहसान का दर्जा कौन सा है, कि अंताबुदल्लाह का अन्न का तरह हो, ऐसे अल्लाह की इबादत करो गोया तुम उसको देख रहे हो, वो नज़र आने लग जाए। अभी तो क्या होता है, हमारे काम अक्सर लोगों के लिए होते हैं, मैडम के लिए होते हैं, लेकिन जब ये स्टेज आ जाए कि अल्लाह के लिए होने लगे, तो जो फिर कमिटमेंट आती, कुर्बानी और सेक्रीफाइस, और इखलास आता है, वो उससे पहले नहीं आता। किसी इंसान के लिए काम करके वो काम में वो जिद्दत, वो बेहतरी आ ही नहीं सकती जब तक कि वो अल्लाह के लिए ना होने लग जाए, उसका लुत्फ ही कुछ और हो जाता है। तो एहसान का दर्जा क्या है? अंताबुदल्लाह का अन्नक तरा, इस तरह अल्लाह की इबादत करो गोया तुम्हें नजर आ रहा है, वो देख रहा है, वो सामने खड़ा है, जैसे वो एक बच्चे को नजर आता था कि अब्बा वो देख रहा है, चोरी ना करो, वो देख रहा है। और अगर ये कैफियत ना भी हो तो इतनी तो हो कि तुम्हें नजर आने लगे, तुम ना देख सको तो ये तो हो कि वो तुमको देख रहा है, ये एहसास तो रहे। और जब ये कैफियत आ जाए तो ऐसे ही लोग अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। वल्लाहु यहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से।